वैश्याएं, जो वैश्याएं ये धंधे में लगी हुई हैं, भारत का नाम जिनसे बदनाम हो रहा है, उन वैश्याओं को उठाना चाहिए, रहम करना चाहिए। इनका नाम ही है वैश्यालय, और वो स्वर्ग में होगा शिवालय। सारा भारत अभी वैश्यालय है। बाप आकर के इस वैश्यालय भारत को शिवालय बनाते हैं। तो तुम पहले पहले वैश्याओं को हाथ करो, ये कन्याएं भी इन वैश्याओं को उठा सकती है। तुम ये वैश्यालय निकाल करके बैठी हो, हम तुमको पवित्र बनाए शिवालय में ले चलेंगे। इस वैश्यालय को अभी बंद करो। मिनिस्टर शादी को भी पकड़ना चाहिए, तो तुम्हारा कुछ नाम वाला होगा। हम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। गवर्नमेंट के पास बड़ा संगठन जाता है तो अखबार वाले भी अखबार में डालते हैं। तुम भी मेमोरेंडम दो। ये दुनिया बहुत बड़ा वैश्यालय हो गई है, इस बड़े वैश्यालय को बंद करो। पहले इनको बंद करना चाहिए। इन वैश्याओं के धंधे को बंद करना चाहिए। तुम माताएं अब इस धंधे में लग जाओ। सब जगह वैश्यालय होंगे, इस गंदगी से छुड़ाना है। इन्हों के ऊपर जो हो उन्हों को हाथ करो। देखो वैश्याओं के हाथ में भी वैश्यालय चलाने का धंधा नहीं है, उनके ऊपर भी कोई है जो वैश्यालय चलाने वाले हैं। वहां जाए भाषण करना चाहिए। दो चार को अगर तुमने उठाया तो अखबार में पड़ जाएगा। कुछ तो नया निकले,
भल बम्ब फेंको। ये तो माताओं का काम है, हम जिंस पर रहम करो। कौन से बम्ब? ज्ञान के बम्ब फेंको, हिंसा वाले नहीं। ये तो माताओं का काम है, हम जिंस पर रहम करो। साधु संत आदि तो कुछ भी नहीं कर सकते, उनका धर्म ही अलग है। वो तो गौ रक्षा आंदोलन करते रहते हैं। कौन सी गऊओं की रक्षा की बात करते हैं? जो जानवर गऊए हैं उनकी रक्षा की बात करते हैं। वास्तव में असली गऊए तुम हो। जो भारत की कन्याएं माताएं हैं वो हैं गऊए। उनको माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं, सारा जीवन उसी खूंटे से बंधी रहती है। तो असली गऊए तुम हो। कृष्ण ने जानवर गऊए नहीं चढ़ाई थी, है उन जानवर गऊओं को चराने से दुनिया का उद्धार नहीं होता है। तुम कन्याएं माताएं हो जिनको उन्होंने ज्ञान की घास चराई थी। तो वह सन्यासी तो ये रास्ता नहीं बता सकते। क्यों क्यों नहीं बता सकते? कि वो सन्यासी भी गुमूत से पैदा हुए हैं, उनकी भी बुद्धि पतित है। सारी दुनिया में सब पतित है। इस पतित दुनिया में सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई इस पतित दुनिया का उद्धार नहीं कर सकता। तो वो सन्यासी भी ये रास्ता नहीं बता सकते। एक दिल्ली में ही नाम निकला तो सब जगह नाम निकल जाएगा। क्या? दिल्ली का उत्थान सारी दुनिया का उत्थान, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन है। क्या? दिल्ली राजधानी के ऊपर बहुत मदार है। सारी दुनिया की नजर कहां लगी हुई है? दिल्ली के ऊपर। क्यों? क्योंकि दुनिया के हर धर्म खंड वालों ने दिल्ली के ऊपर शासन किया है। दुनिया का और कोई शहर ऐसा नहीं है जहां हर धर्म के लोगों ने शासन किया हो। एक दिल्ली ही है जहां सब धर्म वालों ने अपना कब्जा जमाया है। क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्या दिल्ली जगत जननी है? अभी भी कहा भारत जड़ जमीन को भारत माता नहीं कहा जाता। भारत की जो कन्याएं माताएं हैं पवित्रता को पालन करने वाली, वो ही वास्तव में वंदे मातरम कहलाने योग्य है। उन वंदे मातरम में भी कोई एक मुख्य माता है जो जगदम्बा बनती है। वो ही दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाली जगदम्बा है, जिसका नाम है दिल्ली। क्या ली? दिल्ली। परमात्मा बाप की भी नजर दिल्ली के ऊपर है। दिल्ली का परिवर्तन होगा तो सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। अब वो दिल्ली जड़ है या चैतन्य है? पहले चैतन्य का परिवर्तन होगा कि पहले जड़ का परिवर्तन हो जाएगा? चैतन्य आत्मा पहले अपना परिवर्तन कर सकती है, जड़ जमीन का परिवर्तन नहीं हो सकता। जड़ प्रकृति है, प्रकृति का परिवर्तन बाद में होता है, क्योंकि प्रकृति जड़ को अपनी बुद्धि नहीं है, आत्मा को तो अपनी बुद्धि है। तो जिनको अपनी बुद्धि है वो ज्ञान को समझ करके अपना परिवर्तन और दूसरों का परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक दहली में अगर नाम निकला तो सब जगह नाम निकल जाएगा, फिर ये आर समाजी आदि सब पीछे रह जाएंगे। क्या आज भारतवर्ष में कौन से धर्म का नाम ज्यादा बाला है? हैं? आर्य समाजियों का नाम बहुत बाला है, सारी राजाई जैसे उनके हाथ में आई हुई है। जो सत्ता चल रही है राजाई की, वो कैसी सत्ता है? धर्म निरपेक्ष राज्य, कैसा राज्य है? हमें किसी खास धर्म की अपेक्षा नहीं है। हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, हमको तो वोट चाहिए। किसी धर्म विशेष की उनको अपेक्षा नहीं है। तो आर्य समाजियों का कोई अपना स्पेशल धर्म नहीं है। कहते हैं क्या हिंदू धर्म, लेकिन वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म होता ही नहीं। ये आर्य समाजी सब पीछे रह जाएंगे। तुम एक ही बात समझते हो और समझाते हो, क्या एक भगवान बाप है? बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए। भगवान अगर सारी सृष्टि का बाप है तो उससे कुछ वर्षा मिला होगा ना। भारत बरोबर शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, कब? जब रामकृष्ण का राज्य था सत्युग त्रेता में, सत्युग में नारायण का राज्य था। हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहते हैं, तो जरूर जो कृष्ण है वही नारायण है। नारायण का राज्य था सत्युग में, और त्रेता में राम का राज्य था। वो सत्युग त्रेता ही स्वर्ग था। तो भारत बरोबर संपूर्ण शिवालय था, निर्विकारी था। अब देखो कैसा विकारी है। बाबा का बनना यानी स्वर्ग का मालिक बनना। बाबा का बनने का मतलब क्या हुआ? जैसे बाबा चलाए वैसे चले, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। क्या राजयोग का पुरुषार्थ करने के लिए तुमको कोई खास तकलीफ नहीं देते हैं? सिर्फ श्रीमत पर चलो और पवित्र बनो। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, देह अभिमान में नहीं आओ। सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है? हम जो आत्मा है, भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा है, वो सितारे को हम भूल जाते हैं। क्या समझ बैठते हैं कि हम ये इतना बड़ा शरीर है। देवान में मत आओ, पहले बाप के पास जाना है। वो ही ये कहते हैं कि विकारों को छोड़ो। बाप के नजदीक पहुंचने के लिए क्या करना पड़े? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांच विकारों को त्यागना पड़े। ये रावण तुम्हारा आधा कल्प का शत्रु है। ये रावण के सिर हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सिर्फ पुरुष के विकार काम करेंगे दुनिया में, अगर स्त्री ना हो। स्त्री के अंदर भी वही पांच विकार हैं, पुरुष के अंदर भी वही पांच विकार हैं। दस विकार मिलकर क्या हो जाते हैं? रावण का दस सिर बनता है। ये दस सिर का रावण का राज्य सारी दुनिया में हर मनुष्य के ऊपर छाया हुआ है। कोई स्त्री पुरुष नहीं है जो इस रावण राज्य से बाहर हो। ये आधा कल्प का शत्रु है। जब से इस दुनिया में द्वैत शुरू हुआ, दूसरे दूसरे धर्म शुरू हुए, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक के चलाए हुए, तब से इस दुनिया में ये रावण राज्य शुरू हो गया। अब मैं आकर के इसको शिवालय बनाता हूं। मैं जब आकर शिवालय बनाता हूं तो इस दुनिया में जो ये इतने भी मतभेद फैले हुए हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे आदि बने हुए हैं, ये सब चलायमान हो जाएंगे। एक ही शिवालय रह जाएगा। तो इसके लिए अब बाप की मत पर चलना है। शिवालय है देवी देवताओं के रहने का स्थान। इसी दुनिया में, इसी भारत में शिवालय था, देवी देवताओं का राज्य था। देवी देवताएं स्वर्ग में कोई ऊपर नहीं होते, नरक कोई नीचे पाताल में नहीं होता। मनुष्य ही जब बिगड़ता है तो राक्षस नरक बनाने वाला बनता है, और मनुष्य ही जब सुधरता है तो नर से क्या बनता है, नारायण बनता है। तो अभी वैश्यालय है, फिर शिवालय बनना है, फिर आधा कल्प के बाद रावण आता है, शिवालय को वैश्यालय बनाई देता है। ये स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग, दिन से रात और रात से दिन, ये सृष्टि का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। कभी राम की जीत होती है, कभी रावण की जीत हो जाती है। कितनी सहज बातें हैं, कोई भी आवे बोलो बारोबर भारत शिवालय था। पहले सारा भारत शिवालय था और अब वैश्यालय बना है। वैश्यालय को शिवालय फिर बाप को बनाना है, बाप के सिवाय कोई बनाए नहीं सकता। अब बाबा खुद शिवालय बनाने आए हैं, जिनों को शिव बाबा ने शिवालय मालिक, शिवालय का मालिक बनाया, उन्होंने ही भक्ति मार्ग में फिर कितने मंदिर बनाए दिए। यादगार मंदिर कहाँ के हैं, यादगार कहाँ की बनी। भगवान बाप जब आकर के नरक को स्वर्ग बनाते हैं तो उसकी यादगार मंदिर बनाया जाता है। सबसे पुराने से पुराने मंदिर कौन से हैं, लक्ष्मी नारायण के हैं, राम सीता के हैं, राधा कृष्ण के हैं, या शिव शंकर के हैं। शिव शंकर के मंदिर सबसे पुराने हैं। इससे साबित होता है कि परमात्मा बाप शिव ही आकर के इस दुनिया को शिवालय बनाता है, जिसकी यादगार ये मंदिर बने हुए हैं। तो अब ये कोशिश करो, आपस में मिलकर राय निकालनी है। पहले दिल्ली को उठाना है। पहले किसको उठाना है, दिल्ली को। कैसे उठाओगे, जमीन को उठा लोगे दिल्ली की, हैं? दिल्ली की जमीन नहीं उठानी है। जैसे भारत माताओं का नाम बाला है, हैं? तो भारत माताएं अलग अलग क्षेत्र है, वो तो जड़ क्षेत्र बनाए हुए हैं। कोई चैतन्य नदियां हैं, वो गंगा यमुना सरस्वती कोई जड़ है, नदी की बात नहीं है। कोई कन्याएं माताएं हुई है नदी के रूप में, जैसे शंकर के सर के ऊपर कन्या का चित्र दिखाया जाता है, तो उस चित्र से क्या साबित होता है, क्या वो जड़ नदी रही है या कोई चैतन्य है। चैतन्य कोई आत्मा रही होगी ना, जिसने ज्ञान की गंगा बहाई होगी, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया है उस ज्ञान को सारे संसार में फैलाया होगा। तो ऐसे ही ये नदियां हैं, ये अलग अलग क्षेत्र हैं, ये भारत है, ये सब चैतन्य आत्माओं की यादगार है। तो पहले इस दहली को उठाना है, माने कोई चैतन्य दिल्ली है, उस चैतन्य दिल्ली को उठाना है। उठाना है का मतलब इस समय रावण की जेल में है, रावण के कंट्रोल में है, राम के कंट्रोल में नहीं है। रावण का परछाया उसके ऊपर है। रावण को कितने सिर होते हैं, 10 सिर। एक के कंट्रोल में नहीं है, एक राम के कंट्रोल में। राम को कितने सिर दिखाए जाते हैं, राम को एक सिर होता है, माने एक मत है। और रावण की अनेक मतें हैं, तो जहां अनेक मतें होती हैं वो होता है प्रजातंत्र राज्य। प्रजातंत्र राज्य है बेकायदे राज्य। भगवान बाप ने आकर रोज जो राज्य स्थापन किया था वो प्रजातंत्र राज्य नहीं स्थापन किया था, राजयोग सिखा करके राजाओं का राज्य स्थापन किया था। सतयुग के आदि में था नारायण का राज्य। कोई नर था, जिस नर ने पुरुषार्थ किया तो ऐसा नारायण बना। पुरुषार्थ कराने वाला था शिव बाप, वो शिव बाप अब फिर आकर के राजयोग सिखा रहा है, नर से नारायण बनाने का गीता ज्ञान बता रहा है। उस गीता ज्ञान में बताया कि पहले किसको उठाना है, जो सब उठ जाएं। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो किसको पहले उठाना है, दिल्ली को पहले उठाना है। माना कोई है, कोई आत्मा जिसके ऊपर सारा मदार है, उसके ऊपर अगर बुद्धियोग का एकाग्रता का प्रसाद नहीं चढ़ाया तो काम बनने वाला नहीं है। नारी निकेतन भी बहुत होंगे, उन मनुष्यों ने तो ढेर सारे नारी निकेतन खोले हैं, जिनमें नारियों को संरक्षण मिल रहा है। माताओं को खुश होना चाहिए कि बाप आकर के अभी असली नारी निकेतन खोल रहे हैं। प्रदर्शनी में कितनी मेहनत, कितना खर्चा करते हैं, मुश्किल 2-5 निकलते हैं जो समझने वाले होते हैं। समझो 2 हाल लिए, वहां कोई कोई ठहरते हैं। 50,000 आए, उनमें 2-4 निकलेंगे। कोई बिरला निकले जो राजा ही पद लेवे, तो ये सब चलता रहेगा। क्या जो गीता में बोला हुआ है, क्या बोला है कि सहस्त्रों में से कोई एक पुरुषार्थ करता है, और जो सहस्त्रों में से निकलते हैं पुरुषार्थ करने वाले, उन हजारों में से कोई एक प्राप्ति कर पाता है। जो परमात्मा आके राजयोग सिखाते हैं, उस राजयोग को सब कोई नहीं सीखते। भवानी के बच्चे ने भी अच्छी युक्ति से प्रोजेक्टर बनाया है। क्या यज्ञ में सबसे पहले हुजूम को संदेश देने का सबसे पहला साधन कौन सा निकला था? प्रोजेक्टर शो। तो प्रोजेक्टर शो किसने बनाया था? वो तो जड़ प्रोजेक्टर शो था। किसने बनाया? कोई भवानी माता थी जिसके बच्चे ने प्रोजेक्टर शो तैयार किया था, वो तो जड़ प्रोजेक्टर शो था। हैं? कोई भवानी माता रही होगी, असली भवानी कौन है? हैं? असली भवानी है जगदम्बा। जगदम्बा है सारे जगत की अम्बा, जगत की जननी, उसके ऊपर सब बच्चों का हक है। जैसे दिल्ली के ऊपर सारी दुनिया का हक है, सारी दुनिया ने दिल्ली को ऊपर राजाई की है, राज्य भोगा है, तो वो भवानी के बच्चे ने अच्छी युक्ति से प्रोजेक्टर बनाया है। जो आदि में सो वो होता है अंत में। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है। प्रोजेक्टर में क्या करना है? जो समझानी देनी है उसमें सबसे पहले शिव बाबा का परिचय दो। प्रोजेक्टर में और ट्रांसलाइट के जो चित्र होते हैं उसमें क्या अंतर होता है? या टीवी में जो चित्र निकलते हैं चलचित्र, उनमें क्या अंतर होता है? सिनेमा के चित्रों में और प्रोजेक्टर के चित्रों में क्या अंतर होता है? हाँ, वो जड़ चित्र होता है, स्थाई होता है, चलचित्र नहीं होता। और जो टीवी में दिखाया जाता है वो चलचित्र होता है। तो शुरू शुरुआत में प्रोजेक्टर से होते शुरुआत हुई। तो शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, ये प्रोजेक्टर पर तुम समझाओ। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है, क्या समझाओ? तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है, हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी होकर इस सृष्टि पर नहीं आता। क्या वो तो एक व्यापी होकर के आता है? एक व्यापी होकर के आएगा तो एक को याद करना सहज होगा, या सर्वव्यापी होगा तो सहज होगा? एक को याद करना सहज होता है या अनेकों को याद करना सहज होता है? एक को याद करेंगे तो सहज होगा। तो बताया शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, बाप को भी कभी भी सर्वव्यापी नहीं होता है। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले में है, अथवा कुत्ते बिल्ले जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भी परमात्मा है, ऐसा नहीं होता है। ये तो तुम परमात्मा को गाली देते हो। क्या ये तो तुमने ग्लानी की है? ये है ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया। पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। इसमें सारी दुनिया आ गई। मूत पलित तो सब होते हैं, स्वर्ग में मूत होता ही नहीं। क्या स्वर्ग में जो पैदाइश होगी वो मूत की पैदाइश नहीं होगी? जैसे मोर और डेल का गायन है, मोर और डेल को कभी किसी ने संभोग करते नहीं देखा होगा। मोर जब नाचता है तो जो फीमेल मोरनी है वो उसका आंसू पी लेती है, और आंसू से ही उसका गर्भ ठहर जाता है। तो ये एक मिसाल है, ये देह अभिमान की पूंछ की मिसाल कृष्ण को माथे पर दिखाई गई है। क्या कृष्ण को जो 16,000 रानियां दिखाई गई हैं, वो कोई विकार की बात नहीं थी। काहे की बात थी? राजयोग की बात थी। वो इतना बड़ा राजयोगी था कि मयूर की पूंछ उनके सर पर दिखाई गई है ताज बना करके, माने पवित्रता का ताज उन्होंने धारण किया हुआ था। तो बाप फिर भी कहते हैं, बच्चे इन विकारों पर जीत पहनने से मेरे से स्वर्ग का वर्षा ले सकते हो, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हुआ हूं, ऐसे ही वापस नहीं चला जाऊंगा। मैं इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बना करके जाऊंगा। मनुष्य गुरुओं ने तो इस दुनिया को नीचे गिराया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद आए, लेकिन उनके आने से दुनिया नीचे गिरती गई है, दुनिया ऊंची नहीं उठी। एक परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो इस नरक की दुनिया को आकर के स्वर्ग बना कर जाता है। कलह कलह इस युग वाली कलयुगी दुनिया को सतयुग बना कर जाता है। तो मैं स्वर्ग स्थापन करने वाला आया हुआ हूं, मैं ऊंचते ऊंच हूं। क्या ऊंचे ऊंचे पाठ बजाने वाले जो भी पाठधारी इस रंगमंच पर हुए हैं, उन सब में मैं ऊंच पाठ बजाने वाला हूं। जरूर मैं स्वर्ग रचूंगा। जितना ऊंचा होगा उसकी रचना भी उतनी ऊंची होगी। तुम समझते हो सुख दुख ईश्वर देते हैं, भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं? किसी को दुख मिला तो भगवान ने दिया, किसी को सुख मिला तो भगवान ने दिया। तो भगवान इतना ऊंच है तो ऊंच काम करेगा या नीच काम भी करेगा? सुख और दुख देना ये तो मनुष्यों का काम है, भगवान क्या करता है? भगवान तो सुख दाता कहा जाता है, वो सिर्फ सुख ही देता है, किसी को दुख नहीं देता। इसलिए उसका नाम क्या है? उसका असली नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। वो जो भी करेगा, जो भी बोलेगा, जो भी सोचेगा, उस सब बातों में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ। तो लोग समझते हैं कि परमात्मा ही सुख दुख देता है, परंतु नहीं, मुझे तो दुख हरता और सुख करता कहा जाता है। मैं कलयुगी दुनिया के दुखों को हरण कर लेता हूं, और सतयुगी दुनिया में जो सुख होते हैं 16 कला संपूर्ण, उन सुखों का मैं निर्माता हूं। तो फिर मैं दुख कैसे दे सकता हूं? दुखी बनाने वाला यह पुराना तुम्हारा दुश्मन है रावण। क्या जो रावण तुम्हारी आत्मा में घुसा हुआ है, मन बुद्धि में ही बैठा रहता है, काम क्रोध लोह मोह अहंकार, ये तुम्हारा पुराना दुश्मन है। ये दुश्मन है तब तो जलाते आते हैं। हर वर्ष दशहरा मनाते हैं तो क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं। तो ये जलाने की यादगार कहाँ की है? जरूर रावण ने दुख दिया है तो रावण को जलाते हैं। बड़े बड़े राजाएं भी इस रावण के जलाने में, दशहरा मनाने में इंटरेस्ट लेते हैं। कहां से इंटरेस्ट लेते हैं? इतने बड़े बड़े रावण के चित्र बनाते हैं, हैं इंटरेस्ट तो लेते हैं ना। मैसूर का राजा कितना हुजूम इकट्ठा करके दशहरा मनाता था। आज भी मैसूर की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। तो बोला, बड़े बड़े राजाएं भी इतने इस बात में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, समझते कुछ भी नहीं है कि हम रावण को क्यों जलाते हैं। रावण का पुतला बनाएंगे और फिर उसमें आग लगाएंगे। हर वर्ष रावण बनाते हैं, हर वर्ष रावण का पुतला बड़ा बड़ा बनाते चले जाते हैं। राम के चित्र वही छोटे छोटे बनाएंगे और रावण का चित्र हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं। का बात कहां से पैदा होती है ये बड़ा बनाने की? जरूर इस दुनिया में दुख बढ़ाने वाला रावण बड़ा होता जाता है। क्या राम गुप्त होता जाता है और रावण प्रत्यक्ष होता जाता है, बड़ा रूप धारण करता जाता है, जिसकी यादगार में ये बड़ा चित्र बनाते जाते हैं। अब भगवान बाप आए हैं इस रावण राज्य को खलास करने। राम सीता आदि को बहुत मानते हैं, भारत में धूमधाम से रामलीला मनाते हैं। बिलायत से भी रामलीला खेलने वालों को इनवाइट करके बुलाते हैं। भारत कितना मूर्ख बन पड़ा है। क्या रामलीला खेलने से राम राज्य आ जाएगा? राम की सीता चुराई गई, अरे राम भगवान है, जब उनकी सीता पत्नी को चुरा लिया जाएगा तो फिर बचेगा कौन? तो दंत कथाएं लिख दी है। राम को और कोई मनुष्य नहीं मिला जो उन्होंने बंदरों की सेना ली, बंदरों की भालुओं की सेना राम ने ली, और रावण को मनुष्य मिल गए? नहीं, असलियत यह है कि बंदर जैसे मनुष्य हो जाते हैं कलयुग के अंत में। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं, सबसे जास्ती जानवर होता है बंदर, विकारी। काम विकार अति का होता है उसमें, क्रोध विकार अति का होता है, अहंकार अति का होता है। अगर हाथी भी निकलेगा ना सामने से तो उसको भी गुरूर गुरूर करने लग पड़ेगा। तो पांच विकार जिस जानवर में सबसे जास्ती होते हैं, ऐसे जानवरों का मिसाल दिया है राम की सेना में। बाकी कोई बंदर है राम की सेना में नहीं थे, राम की सेना में मनुष्य थे जो बंदरों में चलते। तो बंदरों की सेना ली, ये यहाँ का गायन है, प्रैक्टिकल यादगार है। चौथा पेज, तो कितने मूर्ख बुद्धि बन पड़े। अब उन मूर्खों को बुद्धिमान बनाने के लिए बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिख करके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। करने वाले कौन है? यही गुरु लोग। अब इन गुरुओं से दुनिया का उद्धार नहीं होना है, तो माताओं के द्वारा परमात्मा बाप इस दुनिया का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो माताओं को खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले किसकी सेवा करनी चाहिए? हैं? जगदम्बा की सेवा करनी चाहिए। जगदम्बा के मंदिर में जाओ, ये बात दुनिया वालों के लिए सिखा रहे हैं, ब्राह्मणों को बता रहे हैं, ब्राह्मणों को बाबा पढ़ाए रहे हैं, ब्राह्मणों को ये कार्य करना है, उसमें भी खास माताओं को करना है। क्या दिल्ली जगदम्बा जिसका टाइटल है, वो जगदम्बा जब सरेंडर हुई थी तो अपने आप सरेंडर नहीं हुई थी, कोई दिल्ली की माताएं थी जिन्होंने धक्का लगाया था तब सरेंडर हुई थी। तो माताओं के ऊपर जिम्मेवारी रखी हुई है जगदम्बा को उठाने की। जगदम्बा उठेगी तो सारी दिल्ली उठ जाएगी, सारी दिल्ली उठेगी तो सारा भारत उठ जाएगा। एक के ऊपर सारा मदार है। ओम शांति।